मेरी आवाज आज कुछ ठीक नहीं है वो फ्लू की वजह से।
कोई बात नहीं, आप सवाल करें, आप बोलना तो मैंने जी
सर मैं अब्बा जी का पढ़ रही थी कि अब्बा जी फरमा रहे थे कि अल्लाह मियां हर गुनाह माफ कर देते हैं लेकिन कुदरत के साथ छेड़खानी अल्लाह मियां माफ नहीं करते। सर ये वजाहत फरमा दे कि कुदरत के साथ छेड़खानी से क्या मुराद थी।
मैं आपको एक मिसाल से बात समझा देता हूं। अब आपका घर जो है उसमें आपका निजाम चलता है, हर घर का अपना एक निजाम होता है। अगर मैं आपका हमसाया हूं और आपके घर के मामलात में मुदाखलत करूंगा तो आपका क्या एटीट्यूड होगा, आपको कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा बुरा लगेगा?
लगेगा सर।
शाबाश। इसी तरह अल्लाह रब्बे करीम ने एक निजाम बनाया है, उस निजाम को चलाने के लिए एक मखलूक को तखलीक किया है जिसको हजरत आदम कहा है। अब हजरत आदम को यानी बनी नौ आदम को अल्लाह रब्बे करीम ने अपना नायब डिक्लेयर कर, अब नायब बजाय अल्लाह के सिस्टम पे चलने के अपना सिस्टम चलाएगा तो अल्लाह को कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा बुरा लगेगा?
बुरा लगेगा। पिछले
देखें, आपकी तखलीक लफ्ज मखलूक होना इसको हम भूले हुए हैं, क्योंकि हम मखलूक होने का एहसास खो बैठे हैं। हम समझते हैं मैं ही मैं हूं। फिरौन ने क्या कहा कि मैं अल्लाह का रिप्रेजेंटेटिव हूं, अवतार हूं, लिहाजा तुम मेरी मानो। हजरत मूसा ने उसे आके क्या कहा, इला अहदिया का इला रब्बे का, मैं तुझे तेरे रब की तरफ हदायत दूं। गौर करें, हजरत मूसा क्या कह रहे हैं, मैं भी अल्लाह का भेजा हुआ रसूल, भेजा हुआ मुझे अल्लाह ने भेजा है, तू उसकी मान। और फिरौन क्या कह रहे है? कि तुम मेरी मानो। बस इतना सा फर्क है। ये है कुदरत का निजाम। अगर हम कुदरत के निजाम में अल्लाह की मानते हुए चलेंगे तो कुदरत का पूरा निजाम हमारा साथ देगा, और अगर हम अपनी करेंगे तो कुदरत के निजाम ने कहना है तू कौन है भाई, हाँ या नहीं? हजूर मुर्शिदे करीम का यही इरशाद है। इरशाद का मतलब यह है कि अगर हम अल्लाह की बात को समझ के, उसके जाबितों को समझ के, उसके कवानीन को समझ के उनके मुताबिक चलेंगे तो हम अल्लाह की पसंदीदा मखलूक हैं, वरना जाहिर है हम नापसंदीदा गिने जाएंगे। मजे की बात यह है कि अल्लाह को कुछ भी बुरा नहीं लगता, अल्लाह का सिस्टम पकड़ लेता है। अब इसकी मिसाल यह है कि बच्चे के हाथ में छुरी है, माँ ने उसे मना किया छुरी को नहीं इस तरह खेलो, बच्चे को लग गई, तो किसने काटा, माँ ने काटा कि छुरी ने काटा? यानी अल्लाह नहीं किसी को सजा देता, अल्लाह तो 70 माओ से ज्यादा प्यार करता है, लेकिन आप जब अल्लाह के सिस्टम में उंगली करते हैं तो फिर उंगली कटती है। ये कहा हजूर मुर्शिदे करीम, बात वाजे हो गई
सर।
जी बहुत आप, आपका शुक्रिया कि आप इस काबिल समझते हैं कि ये पूछें मुझसे। जी
नहीं सर, हमारी तसल्ली हो जाती है आपसे पूछ के।
अल्लाह खुश रखे, अल्लाह आपको बहुत खुश रखे। जी और किसी का कोई सवाल?
अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम अस्सलाम।
ये हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ये जो इल्म दिया गया तावील अल अहदीस का, ये ख्वाबों की ताबीर का, और उनकी ये जो खूबसूरती का जो जिक्र आता है कुरान में और ये सारा वाकया, इनका आपस में क्या रिलेशन है?
क्या रिलेशन है? किसका रिलेशन? खूबसूरती का?
ये हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, जी जी जी, उनकी ये जो अपीयरेंस का जो बाकायदा जिक्र आता है कि वो उंगलियां उन्होंने काट ली देखकर, हालांकि हर रूहानी इंसान जो है उसमें एक अट्रैक्शन तो होती है,
बेशक यही इसी तरफ तवज्जो दिलाई गई है। देखे ना, एक हम क्या हैं? हम अपने शऊर की बनी हुई साख्त हैं। इंसान के खदो खाल क्या हैं? इंसान के खदो खाल वो हैं जो उसकी माँ के तसव्वुरात थे उसके बारे में। कोई भी बच्चा अपनी वालदा के तसव्वुरात का अक्स होता है। पहले तो आप इस बात को बड़े इत्मीनान से, सहज स्वभाव से अपने जहन नशीन कर लें। मैं क्या हूं? मैं वही कुछ हूं जो मेरी मां ने मुझे सोच के पैदा किया। यानी मेरी जिन्स का तायन, मेरे खदो खाल का तायन मेरी वालदा के रहम में हुआ, हां या नहीं? इसका क्या मतलब है? क्योंकि उनकी वालदा बहुत ही नेक और पाक दामन और एक नबी की बीवी, फिर नबी की तरबियत ने उनको क्या खूबसूरत ख्यालात अता किए थे कि वो बच्चे को उन्होंने इतना वजीह, इतना शकील, शकील और वजीह, यानी शक्ल और सूरत भी बहुत खूबसूरत और वजाहत भी बहुत। हजरत यूसुफ को अल्लाह रब्बे करीम ने हुस्न का शाहकार करार दिया। हजूर मुर्शिदे करीम ने फरमाया कि भाई हुस्न के सारे शाहकार सामने थे। हजरत यूसुफ, हजूर अलैहिस्सलाम का नाम भी लिया, हजूर अलैहिस्सलाम भी बहुत खूबसूरत इंसान थे। ये बात समझें कि ताल्लुक बच्चे की खूबसूरती का ताल्लुक उसकी माँ के अता करदा शऊर से होता है। 8 साल तक बच्चा उस शऊर पे चलता है जो माँ ने दिया। उसके बाद बच्चे ने खुद क्या अपनाया, किन तसव्वुरात को अपनाया? मैं आपको एक मिसाल देने लगा हूं। आपने सिलसिले में कभी नोट किया, कई लोगों की शक्लें हजूर मुर्शिदे करीम से मिलती मिलने लग पड़ी हैं। यानी
बिल्कुल सर, ये बाकी सही है।
हाँ, क्या हुआ कि हमारे तसव्वुरात, क्योंकि हमारे ज़हन में हमारे पीरो मुर्शिद का जो सांचा है वो हमारे अंदर उतरता जा रहा है, तो क्या हुआ, हमारे खदो खाल बदल रहे हैं। यानी मैं कई दोस्तों को जानता हूँ, कई उनकी शबाहत देख के, पहले जब वो देखते थे हम तो बिल्कुल वो अपनी और तरह लगते थे, अब उनमें अब्बा की झलक दिखती है। ये चीज आप नोट करेंगे, ये बंदे का रूहानी तसर्रफ, ये है मुर्शिदे करीम का रूहानी तसर्रफ के लोग उनके इश्क में जब उनको सोचते हैं तो उनकी शक्लो शुबाहत उन जैसी बन रही है, हाँ या नहीं? अब ताल्लुक रह गया इल्म का। अब इल्म जो है वो इल्मे तावीलुल अहादीस, तावीलुल अहादीस। हदस कहते हैं वाक्य को, हदस कहते हैं हादसा, हमने सुना होगा लफ्ज, यानी कोई चीज का होना हदस है। हमारे यहां हदीस हजूर अलैहिस्सलाम के अकवाल को कहा जाता है। इस बहस से या इस टर्मिनोलॉजी से कतअ नजर, तावीलुल अहादीस का मफहूम ये बना कि वो वाकयात, यानी कोई भी चीज जो रूनमा हो उसकी तावील कर सकते थे कि ये क्यों हुई, इसके पीछे क्या राज है। ये इल्म अल्लाह रब्बे करीम ने उनको अता किया। ख्वाब भी एक हादसा है, यानी एक हैपनिंग है ना, हादसे के बजाय लफ्ज हैपनिंग, किसी भी हैपनिंग की एग्जैक्ट इंटरप्रिटेशन करना, ये अल्लाह की तरफ से उनको इल्म से नवाजा गया था। اللہ رب کریم نے براہ راست نوازا تھا. اب ظاہر ہے کہ وہ چونکہ ان کی سوچوں میں پاکیزگی تھی, ان کی سوچوں میں پولیوشن نہیں تھی, لہذا ان کا ذہن جتنا خوبصورت تھا اتنے خوبصورت وہ لگتے تھے. دیکھیں نا ہمارا چہرہ کیا ہے, ہمارا چہرہ ہماری فیلنگز کا, ہماری کیفیات کا, ہمارے خیالات کا, ہمارے تصورات کی ایک سکرین ہے. ہمارا چہرہ کیا ہے دیکھیں نا, آپ کسی کے دیکھتے ہی کہہ دیتے ہیں اس کو بھوک لگی ہے, یہ بھوکا ہے. آپ غور کریں خواتین میں یہ حس بہت تیز ہوتی ہے, وہ فوراً چہرہ دیکھتے ہی بھانپ لیتی ہیں یہ بندہ اچھا ہے یہ بندہ برا ہے, ہاں یا نہیں. تو یہ کیسے بھانپ لیتی ہیں, کیونکہ ہمارا چہرہ ہمارے پورے شعور کی سکرین ہے. اب ہمیں یہ سکرین ہی نہ ریڈ کرنی آئے, ہمیں اس سکرین کو امپروو کرنا نہ آئے دوسرا مرحلہ. ایک تو ہم ریڈ نہیں کر سکتے, دوسرا ہم نے کبھی توجہ نہیں دی. اگر آپ غور کریں کئی ایکٹر جو ہیں فلم میں, یہ فلم انڈسٹری میں انتہائی بد شکل لوگ تھے, لیکن ان کا کانفیڈنس نے ان کو کیا شہرت کی بلندیوں تک پہنچا دیا. کسی نے ان کی شکل و صورت ہی نہیں دیکھی, شکل و صورت کو اگنور کر کے ان کی ہنر مندی کو دیکھتے رہے. مثلا آپ اینتھنی کوئن کا نام لیجئے, ہماری فلم انڈسٹری میں ایک رنگیلا گزرا, اس کا وہ خود کہتا ہے جو بھی وہ لفظ بولتا ہے چھوڑیں اس کو, ٹھیک ہے نا, کیا مطلب ہوا. تو یہ جو آپ نے بات پوچھی کہ حسن کا تعلق انسان کے تصورات سے, جب کسی کے تصورات واضح ہوں گے اس کا چہرہ ان تصورات کی سکرین بن جائے گا, آپ دیکھیں گے آپ کو اچھا لگے گا. اگر اس کے اندر دیکھیں نا, ایک بندے کے اندر سختی ہے تو اس کے طرف دیکھتے ہی آپ کو احساس ہوگا یہ سختی کا ایک بندہ بڑا سافٹ ہے. یہ ہمارے مشاہدے میں ہم دیکھتے ہی کہہ دیتے ہیں یہ بندہ بڑا نرم دل ہے, کہاں لکھا ہے اس کے نرم دلی. لیکن سکرین جو اطلاع نشر کر رہی ہے ہم وہ ریڈ کر رہے ہیں نا, ٹھیک ہو گیا.
بہت شکریہ.
مراقبہ کیا ہے, مراقبے میں آپ نے ذہن کو ڈھیلا چھوڑ دیا, اب آپ کے ذہن میں جو بھی خیال آئے اسے آنے دیں. میں نے یہ مطلب اس کا اصل طریقہ یہ کہ جو بھی خیال آپ کو آ رہا ہے اس کو ریجیکٹ نہ کریں, اس کے ساتھ لڑیں نہیں, اس کو نوٹ کریں اور گزرنے دیں. اس سے رفتہ رفتہ کیا ہوتا ہے کہ ذہن میں دیکھیں نا, جب ہمیں کوئی خیال آتا ہے ہم کیا کرتے ہیں, اس قانون کو سن لیجئے, ہر خیال کی ایک عمر ہوتی ہے, ہر خیال کی ایک عمر ہوتی ہے. فرض کریں اس کی عمر 15 سیکنڈ ہے, آپ کو ایک خیال آیا, آپ نے اس کو سوچا 5 سیکنڈ اور کہا نہیں 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 یہ بری بات ہے, کیا ہوا, آپ نے 10 سیکنڈ کا جو باقی اس کی لائف تھی اس کو لاشعور میں دفنا دیا. اب ہوتا یہ ہے کہ جو خیال اس طرح سپریس کر دیا جائے وہ ایک طرف تو ہمیں ڈپریس کرتا ہے, دوسری طرف وہ دگنی عمر پا کے باؤنس بیک کرتا ہے. مثلا اب وہ جب دوبارہ ریکر کرے گا تو اب اس کی عمر ہوگی 20 سیکنڈ, اب پھر آپ 5 سیکنڈ سوچتے ہیں پھر دفنا دیتے ہیں, اب وہ 15 سیکنڈ دفنا ہے وہ 30 سیکنڈ کا ہو گیا. جب وہ دوبارہ ریکر کرے گا تو اب آپ 30 سیکنڈ میں سے 5 سیکنڈ سوچیں گے پھر آپ سر کو جھٹک دیں گے نو, آپ نے نو کیا, نتیجہ کیا ہوا, وہ خیال جو ہے وہ آپ کے اندر 25 سیکنڈ کا جب واپس باؤنس کرے گا تو آپ اس کی عمر 50 सेकंड हो चुकी है, गौर करें 15 से 50 हो गई। हम बाज ख्यालात को इतना दबाते हैं, इतना दबाते हैं कि उनकी उम्र यकीन माने हफ्तों हो जाती है। वो क्या होता है, वो बाउंस बैक करते रहते हैं। लिहाजा हम उनसे जान छुड़ाने के लिए क्या होता है, डिप्रेशन में चले जाते हैं। ये है डिप्रेशन का असल कानून। यहां से हम क्या कहते हैं कि भी आप मुराकबा करें। मुराकबे में क्या होता है, असल साइंस ये है कि जो भी ख्याल आ रहा है, ख्याल क्या है, इत्तलात आ रही हैं। जब आपने आंखें बंद कर ली तो इत्तलात कहां से आ रही हैं, अंदर से ही आ रही हैं ना। आप उन्हें आने दें और गुजरने दें। इससे क्या होता है कि आपका जहन आलूदगी से बच जाता है। किससे बच जाता है, उसमें मीनिंग पहनाने के जा का अमल से बच जाता है। हम जब उसे अपनी मर्जी के मतालिब और मफाहिम पहनाते हैं तो ये हमारे शऊर की कारकर्दगी बन जाती है। इससे फिर ख्यालात की तस्वीर डिस्टॉर्ट होती है। हजूर मुर्शिदे करीम ने एक दफा पाकीजगी का तर्जमा यूं फरमाया कि ख्याल में कोई मिलावट ना की जाए। गौर करें, पाकीजगी क्या है। हमारे यहां तो जो भी मफहूम है उसे एक तरफ रखें, लेकिन आप सादा सा कानून देखें कि किसी चीज में मिलावट कर दी जाए तो वह पाक रहेगी, खालस रहेगी। क्यों जी? रहेगी खालस?
नहीं सर।
इसी तरह जब ख्याल आता है ना, देखे ना, हम अक्सर जिक्र सुनते हैं नेगेटिव थिंकिंग का, पॉजिटिव थिंकिंग का और न्यूट्रल थिंकिंग का। पॉजिटिव थिंकिंग ये है कि हम उसको फायदे के लिए इस्तेमाल करें। नेगेटिव थिंकिंग ये कि उस थॉट को नेगेटिव मीनिंग्स पहनाकर या उससे बचने की कोशिश करें या किसी के खिलाफ इस्तेमाल करें। न्यूट्रल थिंकिंग ये है कि हर ख्याल को आप मेरिट पे रिसीव करें और उसे पूरी तरह गुजरने दें, जहन को उसको समझने दें कि ये है क्या, ये क्यों आ रहा है। जब ये प्रोसेस आपके अंदर जारी होगा तो क्या होगा, थॉट्स का फ्लो बन जाएगा, थॉट्स को चैनलाइज करना आ जाएगा आपको। अब जब थॉट्स को आप चैनलाइज करेंगे तो क्या कर रहे हैं आप, अब सोते में आप जब ख्वाब देखेंगे तो आपको उनका शऊर रहेगा कि मैंने क्या ख्वाब देखा। इसे कहते हैं सोते में जागना। अब जब आप वही तलाश जो ख्वाब के हवास में आप वसूल करते हैं जब जागते में वसूल करेंगे तो क्या कहेंगे, जागते में ख्वाब देखने। वाजे हो गई बात
जी सर।
अल्लाह करे के हो जाए, क्योंकि ये थोड़ा सा मतलब जोर मांगती है बात। इसको प्रैक्टिस करने के लिए आपको जहन को ढीला छोड़ना आना चाहिए। जब तक हम आने वाले सारे हर तरह के, देखें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ख्याल आएंगे, न्यूट्रल क्या होता है, जो दोनों को हैंडल करे। अब हमने क्या तमाशा मचाया हुआ है कि नहीं मुझे तो बुरे ख्याल आ रहे हैं, तौबा लाहौल वाला कुव्वत इल्ला बिल्ला, लाहौल वाला कुव्वत, ये करके हम उनको दफना देते हैं, वो बाउंस बैक करते रहते हैं। सारा दिन हम इसी उलझन में और अपने साथ अपने अंदर इसी में लड़ाई में लगे रहते हैं। गौर करें, ठीक हो गया
ये जो जी सर
जी जी
ये मुरब्बी की जिनकी ख्याल को हैंडल यानी फास्ट कर लेते हैं 15 सेकंड यानी कोई ख्याल आया उनको बता देते
हैं जी जी
इससे कम का ख्याल वो इस चीज भी किया वो फिजल आउट हो गया तो वो 15 सेकंड से पहले हो गया तो
हाँ तो होने दे। ये देखे ना, यहाँ पे हमने क्या किया, न्यूट्रलिटी को समझ लिया। आज आपने ये पॉजिटिव नेगेटिव और न्यूट्रल को समझ लिया। ख्याल तो दोनों किस्म के आ सकते हैं, ठीक है। आपका जहन जब दोनों को हैंडल करने लग पड़ेगा, आप किसी को पॉजिटिव नहीं कहेंगे, आप किसी को नेगेटिव नहीं कहेंगे। मिसाल, अब आग है, वो चूल्हे में जले तो खाना पकता है, ये उसका तामीरी इस्तेमाल है। अब वही आग आपने किसी के घर में लगाई, बातों से या वैसे सच में दिया सिलाई से? कहने का मतलब यह है कि वो आग बुरी है, ठीक है। अब न्यूट्रल बंदा आग को सिर्फ आग देखता है, उसका इस्तेमाल मुस्बत या मनफी वो नीचे की सतह है। अब हजरत इब्राहिम ने जब आग पे गौर किया तो किस दर्जे पे गौर किया? आग में तीन चीजें होती हैं, एक उसकी रंगत होती है, एक उसकी रोशनी होती है, और तीसरे उसकी हिद्दत होती है, तपिश, हीट, हाँ या नहीं। कुरान हकीम में जब कहा कुल ना, हमने कहा, हमसे क्या मुराद है? हजरत इब्राहिम के साथ अल्लाह का सिस्टम शामिल है, यानी सिस्टम और हजरत इब्राहिम ने मिलकर एक बात कही, क्या? कि या नारो कूनी बर्दा, हो जा ठंडी, ये नहीं कहा कि बुझ जा। गौर करें क्या फरमाया, कि ठंडी हो जा, ये नहीं कहा कि बुझ जा। आग बुझी नहीं, आग जलती रही, लेकिन हिद्दत गायब कर दी, यानी उसकी एक खसूसियत, एक खासियत को रोक के दिखा दिया। ये सब क्या था? जब गौर करते हुए वो जहन न्यूट्रल हो गया और आग को इस तरह समझा कि अच्छा, इसकी रोशनी और इसकी रंगत तो बरकरार रहे लेकिन इसकी हिद्दत खत्म हो जाए। देखें, ये है न्यूट्रल माइंड, इस तरह से सोचते हैं। हम और आप क्या करते हैं? ये अच्छा है, ये बुरा है, ये इसका इस्तेमाल अच्छा है, इसका इस्तेमाल बुरा है। ये वाकया है ना कुरान हकीम में?
जो उसकी रंगत है,
जी जी,
ये आप रंग उसका है, उसमें हीट नहीं है,
जाहिर है,
ये सेपरेट।
हाँ, देखें रंग, अब आपकी दीवार की रंगत है, ठीक है, इसको आग जैसे रंगत दे दें आप, तो क्या इसमें हीट होगी? अब आप बल्ब जलाते हैं, उसमें रोशनी है, अब एलईडी के बल्ब आ गए हैं, उसमें हीट नहीं है। और करें, अब आपके टीवी की स्क्रीन में छोटे 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 सैकड़ों नहीं हजारों बल्ब होते हैं, हर नुक्ता एक बल्ब है, उसमें टीवी की स्क्रीन को हाथ लगाएं, कोई उसमें हिद्दत होती है, रोशनी तो होती है। और करें, यानी रोशनी, रंगत और हिद्दत का मजमुआ। अब ये तीन लताइफ हैं असल में, इनको ही लताइफ का, ये हजूर कलंदर बाब वालिया ने मिसाल दी है वहां शरह लौह, अपना लौह कलम में, किताब लौह कलम में लताइफ के बयान में उन्होंने बताया कि ये तीन लताइफ हैं। अब एक लतीफे का अमल रोक दिया, इसका क्या मतलब हुआ? कि उनको पहले तो अपने लताइफ का पूरा शऊर था, इसलिए वो दूसरी चीजों के जिस लतीफे को चाहते थे वो रोक सकते थे। ये अलूम जो हैं, यही तो इल्मे नबुवत कहलाते हैं। बात वाज़े हो गई कि नहीं?
एक और सवाल,
इरशाद,
ये अल्लाह का ख्याल भी लोग सप्रेस कर देते हैं या छोड़ देते
हैं,
नहीं छोड़ देते?
जी हाँ, अब जब ये कानून आपने फॉलो किया, ये जो मैंने देखा है कि लोगों को ये मुराकबा करना नहीं आ रहा, वो तस्वीर सजा के बस बैठे हैं, तो मैंने तबसरा कर दिया कि भाई ये तो बुतपरस्ती हुई, उस पे सारे मेरे खिलाफ हो गए कि ये बुरी बात कही आपने। आपने मुराकबे की तौहीन कर दी। वो तो शुक्र है तौहीने मुराकबे का मुकदमा नहीं दर्ज हुआ। लेकिन जब किसी ने मेरी बात सुनी और समझा कि मैं क्या अर्ज कर रहा हूं, मैंने कहा कि हमें ये तसव्वुर करना चाहिए कि मैं अब्बा हूं, यानी मैं नकल करूं, बाप की नकल करूंगा तो मेरे अंदर उनकी तरह फिक्र मुंतकिल होगी, जब मैं नकल करूंगा मेरे अंदर उनका जहन मुंतकिल होगा, जब मैं उनकी नकल करूंगा तो मेरे अंदर वो सलाहियतें भी पैदा हो जाएंगी, जब मैं उनकी नकल करता रहूंगा तो रफ्ता रफ्ता मुझे उनका इल्म भी मुंतकिल होगा। हाँ या नहीं? अच्छा, अब जिन लोगों ने भी इस खाकसार की ये बात सुन के इस पे अमल किया, उन्होंने कहा यार ये तो वाकई बड़ी फायदे की बात कही तुमने, आप खुद भी करके देखें, आप आजमा के देखें कितना फर्क पड़ता है। देखें ना, जब आप एक ख्याल में यकसू हो गए, एक सिमत चल पड़े, अब जो भी ख्याल आए आने दीजिए, गुजरने दीजिए, आने दीजिए, गुजरने दीजिए। आप अब्बा बन के बैठे हुए हैं, समझें कि अब्बा के जहन में ये ख्याल चल रहे हैं। हाँ तो चल रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं? वो उन ख्यालात से परेशान हो रहे हैं। परेशान होने का क्या मतलब है? कि उसमें हमने अपनी मर्जी का मानी पहना दिया, इसलिए मैं परेशान हूं। मैं खुश हो रहा हूं इसलिए कि मैंने अपनी मर्जी के मानी पहना है, मैं खुश हो रहा हूं। अच्छा, ना मैंने खुशी के मानी पहना है, ना मैंने परेशानी के मानी पहना है, मैं उसे सिर्फ तमाशा देख रहा हूं। बताइए क्या हुआ? मैं न्यूट्रल ना हो गया? ठीक हो गया ना? इस तरह जब आप ख्यालात को ओरिजिनल हालत में वसूल करने का हुनर सीख लेते हैं। क्या लफ्ज बोला मैंने? ख्यालात को ओरिजिनल हालत में वसूल करने का हुनर सीख लेते हैं, तो फिर क्या होता है? फिर आप पे इल्म खुलता है। ठीक हो गया? ये जरा अपना माइक ऑफ कर लें जिनके बच्चों की आवाज आ रही है ना। जी
सर, मैंने ऑन किया था, मैं सवाल करूं? मैं तो
इरशाद 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 जी,
बेदारी के अमाल और वाकयात, ख्वाब के अमाल और वाकयात का मुआवजा किस तरह से? जैसे मैं खुद भी ख्वाब देखती हूं, तो ख्वाब में जो बेदारी के बातें होती वहां वो भी कर रही होती हूं।
बिल्कुल बिल्कुल, देखें हवास तो दोनों एक ही जगह है ना, एक जैसे है ना। वही हवास जिनका इस्तेमाल हम बेदारी में एक रफ्तार से करते हैं, एक स्पीड है जिसके तहत हम बेदारी में हवास का इस्तेमाल करते हैं। फर्ज करें उस स्पीड का यूनिट एक है। जब ये स्पीड बढ़ जाती है, 70 गुना हो जाती है, तो क्या होता है? हम इसका नाम ख्वाब रखते हैं। ख्वाब में क्या होता है? तरतीब जमानी टूट जाती है, तरतीब मकानी भी टूट जाती है, खत्म नहीं हो जाती, टूट जाती है। क्या मतलब? आप ख्वाब में देख रहे हैं मैं पानी पी रही हूं, फिर देखते हैं कि मैं पहाड़ पे सैर कर रही हूं, फिर आप देखते हैं कि मैं गाड़ी में बैठी जा रही हूं। तो ये जो पानी पीते पीते आप अचानक पहाड़ पे पहुंच गए, ये क्या हुआ? दरमियान में आपने सफर तो किया ही नहीं। क्या होता है कि जहन स्विच करता है, एक ख्याल से दूसरे ख्याल, दूसरे से तीसरे ख्याल, तीसरे से चौथे ख्याल, वहां पे आप जिस्मानी निजाम को साथ लेके नहीं चल रहे। इनको हजूर खलंदर बाब औलिया ने गैर मुनकसिम हवास कहा है, यानी ख्वाब की हालत में हमारे हवास जहन के अंदर एक नुक्ते में सिमटे हुए होते हैं, और बेदारी में ये हवास तकसीम हो जाते हैं। हाथ से आप छूते हैं उसका लम्स महसूस करते हैं, नाक से आप सूंघते हैं, कान से आप सुनते हैं, आंखों से आप देखते हैं, ये क्या हुआ? हवास की तकसीम हो गई। कब? बेदारी में। जब सोते हैं तो क्या होता है, कान तो खुले हैं। आप कहते हैं जी आंखें मैंने बंद कर ली इसलिए नहीं नजर आ रहा, ठीक है तो कान तो खुले हैं, तो आवाज क्यों नहीं आ रही। जब आप सो जाते हैं, आप ख्वाब में देखते हैं मैं बातें सुन रहा हूं, आप ख्वाब में देखते हैं मैं चल फिर रहा हूं, आप ख्वाब में देखते हैं हालांकि आप तो लेटे होते हैं। तो फर्क है मुनकसिम और गैर मुनकसिम हवास का। जब तक हम इन गैर मुनकसिम हवास का इस्तेमाल नहीं सीखेंगे, ये कहते हैं इसी को कहा मैंने कि सोते में जागना या जागते में सोना। जागते में सोना क्या है कि आप बेदार हैं लेकिन आपने हवास को गैर मुनकसिम कर लिया, ये हो गया जागते में ख्वाब देखना। यानी हवास का इस्तेमाल तो जारी रहेगा ना। तो ख्वाब में और बेदारी में असल फर्क हवास की तकसीम, हवास की रफ्तार का है। जिस रफ्तार से ये तकसीम होके काम करते हैं वो बहुत स्लो है। जब ये मुजतमा होके गैर मुनकसिम हो जाते हैं, जहन के अंदर एक नुक्ते में सिमट जाते हैं, तो इनकी रफ्तार 70 गुना हो जाती है। लैलतुल कदर में यही रफ्तार 70,000 गुना हो जाती है, और मौत के वक्त हवास की ये रफ्तार 3,65,000 गुना हो जाती है। एक अंदाजा है। उससे क्या होता है, जिसम परमानेंटली रूह जो है बॉडी को परमानेंटली डिस्कार्ड कर देती है, और असल बंदा इसको छोड़ के कहता है इस बोझ को कहां उठाए फिर खुदा हाफिज। ये होता है। वाजे हो गया कि ख्वाब और बेदारी के हवास का तकाबली जायजा क्या है।
जी बहुत शुक्रिया। एक सवाल और है
इरशाद।
जैसे कि आपने कहा कि कोई गलत ख्याल आ जाता है फौरन तौबा से बात करने लग जाते, तो वाकई ये ख्याल आता है गलत? कई दफा हम तस्बीहात पढ़ रहे होते हैं उसमें भी ऐसा ख्याल आता है जो कभी सोचा भी नहीं होता, गलत ख्याल।
जी
हम तस्बीहात पढ़ रहे हैं, अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, उसमें भी
लोग नमाज, आप गौर करें सब लोग ये शिकायत करते हैं मैं नमाज पढ़ने खड़ा होता हूँ सारी दुनिया के ख्याल आते हैं मुझे, कहते हैं या नहीं? क्यों जी? जब हम नमाज कायम करने खड़े होते हैं तो दुनिया जहां के ख्यालात आते हैं या नहीं आते?
आते हैं लेकिन अब कम हो गया।
शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। देखें, कहने का मतलब ये है कि जो भी ख्याल आए मैंने क्या अर्ज किया, मैंने ये नहीं कहा कि उस ख्याल पे आप अमल करें, कहा मैंने हरगिज नहीं। जहन में उसको गुजरने दें, उसको हैंडल करना सीखें। उसकी अच्छाई बुराई दोनों पता है आपको, क्योंकि जमीर अंदर है, जमीर जता रहा है कि ये अच्छा ये बुरा है। लेकिन हम क्योंकि न्यूट्रल जहन की बात कर रहे हैं कि न्यूट्रलिटी किसका नाम है, न्यूट्रल ये है कि आग से घर जल रहा है, आग से खाना पक रहा है, मेरे लिए आग सिर्फ आग है, मैं ना उसको अच्छा देख रहा हूं ना बुरा देख रहा हूं। तो क्या हुआ जहन भाई, जरूरत की इस्तेमाल का तरीका आ गया ना इसमें। अब ख्याल आया आग का, अब जरूरी है कि मैं किसी का घर जलाऊं? क्यों जी? मतलब है उस ख्याल को अगर मैं मतलब है कि रोक लूं, या और नहीं 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 ये तो बड़ी बुरी बात है, तौबा 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 तौबा, क्या हुआ मैंने उसको सप्रेस कर दिया। अब कई लोगों को ये होता है, ये नफ्सियाती मरीज जो होते हैं क्या करते हैं, बच्चे जो हैं वो मतलब है वो आग लगाते हैं, माँ बाप परेशान है कि इसको क्या मसला है। वो मसला ये होता है कि उसने वो थॉट्स का चैनल नहीं किया, चैनलाइज नहीं किया थॉट्स को, ये मसला होता है। जब बंदा यकसू हो जाता है ना, यकसू एक तरफ लग जाता है, तो फिर ध्यान नहीं आता। नमाज में हमें क्यों इतने मुतफरक ख्याल आते हैं? क्योंकि हम यकसू नहीं होते। हमारा ध्यान अल्लाह की तरफ कब होता है? हमारा ध्यान तो अपनी उठक बैठक पे और गिनती पे होता है, हाँ या नहीं, भाई इतनी दफा पढ़ना है, ये पढ़ना है, इतनी रकत चल रही है, चौथी रकत है, तीसरी है, दूसरी है, ऐसा हमारा ध्यान किधर होता है? खड़े हम अल्लाह के सामने होते हैं और गिनती गिन रहे होते हैं, तो यकसुई कहां से आ जाएगी? अब यकसू बंदा ये सारे अमाल करेगा, ध्यान अल्लाह की तरफ रखेगा। कई मिसालें हैं, मसलन आप किताब पढ़ रहे हैं, ध्यान किताब में है, आप चाय भी पी रहे हैं, गौर करें। उस वक्त आप देखें ना, मुराकबा करते हुए हमें पैर सुन्न हो जाते हैं, सोते में आप 8 घंटे सोते हैं, मजाल है पैर सुन्न हो जाए, क्या करते हैं? करवट ले लेते हैं ना, लेकिन करवट लेने में नींद तो डिस्टर्ब नहीं होती। इसी तरह मुराकबे में अगर करवट ली जाए और आप उसकी तरफ तवज्जो ना दें तो क्या होगा? क्या होगा? तवज्जो ना देना ही एक सुई हुई ना। क्यों जी?
सात बच्चे में डिस्टर्ब कर।
कोई बात नहीं, बात यह कि आपको बात समझ आ गई कि यकसुई किसे कहते हैं। भाई किसी चीज जब आप एक ध्यान में लग गए तो दूसरी चीजों को तवज्जो ना दें, वो आए उन्हें गुजरने दें, यानी गैर इरादी तौर पे। जैसे आपने देखा होगा बाज लोग काम करते हैं, सिगरेट भी पी रहे हैं, ध्यान नहीं होता सिगरेट पे, लेकिन सुट्टा भी लग रहा है और साथ में काम भी हो रहा है, हाँ या नहीं? घर में कितने ही काम है, खवातीन उधर से मतलब फोन पे बात भी कर रही हैं और रोटी भी पका रही हैं, हाँ या नहीं? मतलब ये कि हाथ अपना काम कर रहे हैं और जहन अपना काम कर रहा है, इसे कहते हैं ना तसव्वुफ में दिल बयार दस्त बकार। दिल में अल्लाह बसा हुआ है, हाथ पैर काम कर रहे हैं। नमाज में हमारे जब ये हालत आ जाए तो बताइए कितना मजा आएगा। कोई बात नहीं, बात समझ आ गई कि नहीं?
ये समझ आ गई, और मतलब कि हम यकसू नहीं होते तो आत्मा रहे उसमें हमें वो गलत ख्याल भी आ जाते।
अब देखें, फर्ज करें जब आप या हय्यो या कय्यूम पढ़ रहे हैं, हम या हय्यो या कय्यूम पढ़ रहे हैं, अब मुंह से पढ़ रहे हैं और जहन को हमने ढीला छोड़ा हुआ है, ठीक है। अब अगर हम यकसू हो जाए, यानी कि या हय्यो कहते हुए अल्लाह की सिफत हयात को महसूस करने के चक्कर में पड़ जाए, या कयूम कहते हुए अल्लाह की सिफत कयाम को महसूस करने लगे, तो क्या होगा? कोई दूसरा ख्याल आएगा आपको? क्योंकि आपका जहन इधर बिजी हो गया, किसमें? जो पढ़ रहे हैं उसको महसूस करने में लगे हुए हैं। मैं एक मिसाल देता हूँ, हम लफ्ज अल्लाह बोलते हैं और अक्सर बोलते हैं, वाफर बोलते हैं, अल्लाह ने किया, अल्लाह ने चाहा, अल्लाह ने ये हुआ, अल्लाह ने किया, हर बंदे की जबान पे अल्लाह का जिक्र है या नहीं है? लेकिन अल्लाह कहते हुए आपको अपने इनर में कहीं अल्लाह महसूस भी हुआ? यानी जब आप या हय्यो कह रहे हैं तो आपके अंदर ये बात नहीं आनी चाहिए कि हयात, मैं हयात को पुकार रहा हूं या पुकार रही हूं। हयात को, हयात क्या है? जिंदगी, जिंदगी को पुकार रही हूं। आप कहेंगे जी वो तो तादाद टूट जाएगी। तेज तेज पढ़ती हूँ, नहीं, आप आराम आराम से पढ़ें, सोच सोच के पढ़ें, समझ समझ के पढ़ें, महसूस करके पढ़ कहें या हय्यो या कय्यूम। आपने देखा है हमारे असबाक में या हय्यो या कय्यूम को रिदम के साथ लंबा करके कहने की बात कही गई है। इसके पीछे असल हिकमत ये है कि जहन किसी तरह सिफते हयात की तरफ मतवज हो जाए, अल्लाह की सिफत कयाम की तरफ मतवज हो जाए, फिर इन दोनों का ताल्लुक ढूंढें कि हयात को कयाम के लिए वसाइल चाहिए। असल में हम क्या कह रहे हैं, या हयो या कयूम, यानी मुझे वसाइल अता कर। बात हो रही थी, अब जब आप इस तरह गहराई में सोच रहे होंगे कोई दूसरा ख्याल आ सकता है? मतलब है फार्मूला मैंने अर्ज कर दिया कि किसी एक ख्याल में आप बिजी तो हो जाएं, दूसरे ख्यालात को इग्नोर करना सीख लेंगे। ठीक हो गया? देखें, अब परेशानी का लफ्जी तर्जमा या आज सुन लीजिए, परेशान कहते हैं बिखरने को। जब जहन बिखरता है तो हम परेशान होते हैं। जब आप किसी एक नुक्ते पे इर्तकाज कर लेते हैं तो सिमटाव आ जाता है, पर बिखराव खत्म हो जाता है। इसीलिए कहा कि अल्लाह का जिक्र इत्मीनाने कल्ब का बायस है। किसने कहा? अल्लाह ने खुद फरमाया कुरान में, कहा या नहीं? यानी अल्लाह की तरफ मतवज्जो होने से क्या हुआ कि जहन का बिखराव, बिखरा हुआ जहन सिमट गया, इसलिए होता है। मैंने आपको उसकी वो मैकेनिज्म अर्ज कर दिया। तो ये किसी भी परेशानी से घबराना नहीं, फौरन अपने जहन को समेटने में लग जाएंगे। जहन को समेटने का सबसे अच्छा तरीका ये कि जो वजह बन रही है परेशानी की उसका हल ढूंढे। परेशान होने से तो मसला नहीं हल होता, हल करने से मसला हल होता है। अगर हमारे कंट्रोल में नहीं है तो फिर जाहिर है कि हम अल्लाह की तरफ रजू करेंगे, यही इसका असल हल है। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। जी वालेकुम अस्सलाम। नूर कहते हैं ख्याल को और फिरासत कहते हैं अकल को। फिरासत का लफ्ज जो है ये फर्स से है, फर्स कहते हैं घोड़े को। घोड़े से क्या काम लेते हैं हम? घोड़े की रफ्तार इंसान की रफ्तार से ज्यादा है और उसका स्टेमिना भी ज्यादा, वो ज्यादा दूर तक जाता है। तो फिरासत कहते हैं जहन की रसाई को, जहन की रसाई को। यानी जब आप अपने जहन से आगे तक देखना सीख लेते हैं तो हम कहते हैं इसको नूरे फिरासत हासिल हो गया, यानी इसके ख्यालात की रीच और रसाई बहुत आगे तक है। ये इरशाद अली मुकाम है हजूर अलैहिस्सलाम का कि मोमिन की फिरासत से डरो क्योंकि वो अल्लाह के नूर से देखता है। अल्लाह के नूर से देखता है यानी वो उसके जहन में अल्लाह ही के ख्यालात चलते, वो दुनियावी ख्यालात को तवज्जो नहीं देता, उन पे ध्यान नहीं देता, उनमें इन्वॉल्व नहीं होता। असल लफ्ज है इन्वॉल्व होना, ख्याल तो आते हैं लेकिन इन्वॉल्व नहीं होता। तो क्या होता है फिर? उसकी फिरासत यानी उसकी नजर, आगे तक दिखाती है उसको, अच्छा अगर मैंने ये किया तो फिर ये होगा, ये किया तो ये होगा, इसने ये कहा इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब, वो हर चीज को आगे तक देख रहा होता है, इसको कहते हैं फिरासत, अंग्रेजी में से विजडम कहते हैं। वाजे हो गई बात?
जी सर, बहुत शुक्रिया सर। ये आरिफ और मारूफ में क्या फर्क है?
आरिफ जानने वाले को कहते हैं, मारूफ जिसको जाना जाए। आरिफ का मतलब है जानने वाला, और मारूफ जिसको जाना जाए। हमारे यहां मारूफ का तर्जमा है कि जो आम हो जाए, हमारे यहां कहते हैं ना अमरे बिल मारूफ, कि जो काम आम तौर पे होना चाहिए, हमारे यहां इसका यह तर्जमा लिया जाता है। आरिफ कहते हैं जो अमरे बिल मारूफ, यानी जिस काम को अल्लाह ने कहा कि करो और आपने जान लिया कि मुझे ये करना चाहिए, तो फिर जब आप वो काम करेंगे और आप फिर उस काम की हिकमतें जानेंगे तो आप आरिफ कहलाएंगे। ठीक हो गया
जी सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर,
वेलकम जी।
अस्सलाम वालेकुम सर।
जहर नसीब। वालेकुम अस्सलाम, वेलकम सर।
सर क्या हाल चाल?
अल्लाह का इनाम है सर।
अच्छा सर, ये जो आप तस्वुर शेख का बता रहे थे कि खुद को जो है वो मुर्शिद तस्वुर करके मुराकबा किया जाए,
जी
तो ये बचपन किताब मुराकबा के अंदर जो है वो तस्वुर शेख के तरीके बताए हैं, चार तरीके बताए हैं, उनमें से जो बेहतरीन तरीका जो है ये ही बताया उन्होंने जो आप बता रहे हैं।
अल्लाह आपको खुश रखे, आपने तस्दीक फरमाई। ये किताब मुराकबे का चौथा, वो जो तसव्वुर शेख के चैप्टर का चौथा नंबर है ना, शेख नंबर चार, उसमें यही तो हुनर बताया, यही तो गुर बताया। देखे ना, मैंने कहा, अल्लाह खुश रखे आपको, देखे ना मैंने कहाँ से सीखा है, हजूर की बातों से सीखा ना, उनकी बातों से, उनके क्या कहते हैं ये तहरीरों से। भाई मैंने तहरीर पढ़ी, काम का जुमला जो है वो मेरा ज़हन फौरन उचक लेता है। उचक्का ना हो तो कहीं।
अच्छा सर, ये जो है अराफ के अंदर क्या जो मुख्तलिफ ज़ोन है उनमें मुख्तलिफ जो तबकात के लोग हैं वो ट्रैवल कर सकते हैं या मखसूस लोग ही?
जी हाँ बिल्कुल, पहले तो ये तय करें ना, इराफ कहते किसे हैं, ये है कहाँ।
जी जी,
देखे ना इराफ का लफ्जी तर्जमा हमने किया हुआ बुलंदी, ठीक है, लेकिन एन रे फे इसका मादा है तो क्या मतलब हुआ, रफियत जो है यानी आरिफ होना, मारूफ होना, ये अभी बात हुई ना, तो एराफ भी तो इसी इसी मादे से है ना।
जी सर।
यानी जब आप, अब एराफ कहाँ है, एराफ मेरे और आपके अंदर है। मिसाल मैं नाम लेता हूँ एक, ठीक है, मोहम्मद अली एक नाम है, उसके साथ जिना लगा दें तो आपके जेहन में एक बंदा आया जो फौत हो चुका हुआ है, लेकिन कहाँ, देखें सुनने वाले सबके जेहन में आया कि नहीं, तो बंदा कहाँ हुआ, इराफ में हुआ या मेरे अंदर हुआ, तो इराफ भी मेरे अंदर है, कहा ना अल्लाह ने कि भी सब कुछ तुम्हारे अंदर है, कहा या नहीं, तो इराफ भी हमारे अंदर ही है, हम अपने इनर में। अब देखें मैं नाम दूसरा लेने लगा, मोहम्मद अली बॉक्सर, एक जहन में दूसरी शख्सियत आ गई कि नहीं आई। अब इसी तरह अगर मैं हजूर अलैहिस्सलाम का इसमें मुबारक जो है वो अर्ज करूं तो आपके जहन में आ गया कि नहीं, वो कहां है, मेरे और आपके अंदर है। اب اعراف کے جو زون ہیں وہ ہماری رسائی کا نام ہے. خواب میں آپ کیسے چلتے پھرتے ہیں؟ خواب میں کہاں ہوتے ہیں؟ خواب ہی کو تو اعراف کہتے ہیں. آپ دیکھیں نا خواب میں آپ کی ملاقات ہمارے جو مرحومین ہیں, جو لوگ رشتہ دار ہیں جن کو ہم جانتے ہیں, وہ فوت ہو چکے ہیں. کئی لوگوں کو بزرگوں سے جو فوت ہو چکے ہیں ان سے ملاقات ہوتی. کیا مطلب ہوا ہم کہاں ہیں جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں؟ گویا ہم بھی اعراف میں چلے جاتے ہیں جب سوتے ہیں. تو اگر واپسی ہو جائے تو ہم بیدار ہو جاتے ہیں, ورنہ پرماننٹلی انا للہ و انا الیہ راجعون ہو جاتے ہیں. ایسا ہے یا نہیں؟
جی سر.
تو اگر یہ بات واضح ہو جائے کہ اعراف کیا ہے, تو پھر یہ سارے سوالوں کے جواب آپ خود دے سکتے ہیں. دیکھیے نا, جب آپ اپنے انر میں خواب دیکھتے ہیں تو چلتے پھرتے دنیا میں جہاں مرضی گھومے پھریں. کوئی دیکھتا ہے میں امریکہ میں ہوں, کوئی دیکھتا ہے میں سعودیہ میں ہوں, کوئی دیکھتا ہے میں خانہ کعبہ میں بیٹھا ہوں, کوئی دیکھتا ہے میں روضہ رسول پہ ہوں. لوگ دیکھتے ہیں یا نہیں؟
جی سر.
کیا مطلب ہوا؟ اسی طرح جب آپ عراق میں داخل ہو گئے تو وہاں آپ ٹریول ہی تو کر سکتے ہیں, اور وہ بھی بغیر سواری کے. وہاں سواری نہیں ہے, وہاں کیا نہیں ہے؟ مینز آف ٹرانسپورٹیشن نہیں ہے. آپ صرف ارادہ کرتے ہیں, سوچتے ہیں اور وہاں پہنچ جاتے ہیں. وہاں پہ ٹریولنگ اس طرح سے ہے. اگر آپ ٹریول کا لطف لینا چاہتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں میں چل رہا ہوں تو آپ چل رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں میں امریکہ پہنچ گیا ہوں, پہنچ گئے. وہ چلنا بیچ میں سے حذف ہو گیا. یہ ہے اعراف کی کیفیات. ٹھیک ہو گیا؟
جی سر. یہ کتاب لوح قلم میں حضور قلندر بابا اولیاء نے گلاب کی مثال دی ہے کہ وہ عالم امر میں جو گلاب ہے وہ ویسا ہی ہوتا ہے جیسے حقیقی دنیا میں ہوتا ہے, اور اس کو جو ہے عالم نسوت میں لایا جا سکتا ہے, تو اس کا کچھ بتا دیں گے کہ؟
جی ہاں, دیکھیں بڑا یہ انہوں نے تو بڑی وضاحت سے بتایا ہے کہ اصل میں کیا ہوتا ہے. ہماری ذات جب کسی چیز کو دیکھتی ہے تو جب تک نقطہ ذات اس چیز میں ڈھلتا نہیں ہے, تبدیل نہیں ہوتا, ہم اس چیز کو نہیں دیکھ سکتے. ٹھیک ہو گیا؟ اب جب آپ کی ذات گلاب کو امیجن کر رہی ہے تو کیا کر رہی ہے؟ آپ کا نقطہ ذات گلاب بن گیا. یہ سیکنڈ کے ہزارویں حصے میں ہوا. ٹھیک ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کیونکہ آپ کی توجہ بھی ادھر نہیں ہے, بس مجھے جی گلاب کا خیال آیا. اب اگر آپ کے ذہن میں یہ ڈیپتھ ہو, یہ گہرائی ہو, اور اس میں وہ نفوذ کر جانے والی صلاحیت آ جائے, کیا ہوگا؟ آپ اس گلاب کو اپنے انر میں دیکھیں گے, دیکھیں گے, اور پھر جب آپ اس کو ارادے کے ساتھ باہر لانا چاہیں گے تو لے آئیں گے. اب اس کے دو طریقے ہیں. ایک ہے خارق العادت طریقے سے باہر لانا. اس کے لیے ظاہر ہے ارادے کی جو طاقت چاہیے وہ شمس تبریز جیسا بندہ چاہیے. لیکن عام بندہ کیا کرتا ہے؟ اب آپ کو گلاب کا خیال آیا تو آپ کیا کریں گے؟ آپ جائیں گے بازار سے, نرسری سے گلاب کا پودا خرید کے لائیں گے, گھر میں لا کے لگائیں گے. گلاب آ جائے گا کہ نہیں آ جائے گا؟ کیا ہوا؟ آپ کے ذہن پہ گلاب کی تصویر آئی, آپ نے خواہش کی, ارادہ کیا, اور وسائل کو جو کہ مادی زون میں ہم استعمال کرنے کی عادت رکھتے ہیں, آپ نے ان کو استعمال کرتے ہوئے گلاب کھلا لیے. ہاں یا نہیں؟
جی سر.
بات واضح ہو گئی؟ یعنی ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اسے جو بھی آپ نے امیجن کیا گلاب کو اپنے انر میں فیل کیا تو آپ نے اس کو باہر لگوا لیا. جا کے مطلب جو مادی عالم ناسوت کی پابندیوں میں رہتے ہوئے وسائل کو استعمال کرتے ہوئے. اب دوسرا طریقہ یہ کہ آپ عالم ناسوت سے اوپر اٹھ کے کریں. ظاہر ہے وہ اللہ کی دی ہوئی بخشی ہوئی صلاحیت ہے ہر انسان کے اندر ہے, لیکن وہ پریکٹس वो ताकत, वो यकीन चीजें यकीन के जोर पे मजहर बनती है। अगर आप अपने अंदर ये यकीन डेवलप कर लें तो क्या होगा, वो गुलाब जो आपके अंदर है, आपके जहन की स्क्रीन पे है, वो मादी जोन में ट्रांसफर कर सकेंगे आप। क्या करना है, रोशनियों को इज्तमा करके, यानी उसके पूरे, रोशनी किसे कहते हैं, तसव्वुरात को, गुलाब के तसव्वुरात को आपने मटेरियलाइज कर दिया, ठीक हो गया
जी सर। वो जो आपकी वो नई कावी जो है वो ये पब्लिश फॉर्म में आई है कि नहीं?
नहीं अभी नहीं, असल में उस पे ये जो हमने बनाया ना, ये थोड़ा सा एक साहब ने तवज्जो दिलाई कि इसके सफ़े कम करें, यानी इसका स्पेसिंग कम करके इसको ज़रा कटेल कर दें ताकि ये प्रिंट आउट लेने में या छापने में कॉस्ट कम हो जाए।
अच्छा,
तो अब इस पे काम करवा रहा हूँ, अगर हो गया तो छाप देंगे, वरना जो हमें जल्दी पड़ी हुई थी कि लोग जल्दी से इस्तफादा कर लें।
मैं उसमें क्या काम करवा रहे हैं, वो असल चीज ना बीच में से वो मिस हो जाए।
अल्लाह मालिक है, सिर्फ स्पेसिंग, ये जो लाइनों के दरमियान फासला है ना
जी जी, अच्छा अच्छा,
इसकी मतलब है फॉर्मेटिंग इस तरह से होगी कि ये फासला कम किया जाए।
ठीक है,
या तो एक तजवीज ये आ रही है कि इसको कॉलम्स में कर दिया जाए।
अच्छा,
मतलब है कि ये सारा टेक्स्ट जो है दो कॉलम्स में आ जाए पेज पे, उससे भी स्पेस काफी बच जाएगी ना
जी जी। ठीक है,
चलें, बहरहाल ये बात इस वक्त भी एक कोई और मौजू जी। और
सर आवाज की स्पीड जो है वो नींद कम करके होती है या कोई सांस की मशकों से कभी इनमें अमल दखल है?
सांस की मशकें हो या जागना हो, इन दोनों का असल फायदा ये है कि आपकी कुव्वत इरादी बढ़ती है, और हवास की रफ्तारों का ताल्लुक जो है जाहिर कुव्वत इरादी के ताते है। आप हवास को किस स्पीड पे इस्तेमाल करना चाहते हैं, सखर लकुम लैल व नहार, अल्लाह ने कहा कि मैंने तुम्हारे लिए इसको मुसखर कर दिया, यानी आपके कंट्रोल में दे दिए, किसको, हवास की रफ्तारों को। अब ये दोनों काम बहुत फायदामंद है, लगातार जागना यानी कम सोना, कम खाना और कम बोलना। ये कम बोलने पे मुझे अपने आप पे हंसी आ गई कि मैं सबसे ज्यादा बोलता हूँ। नहीं मतलब है कि फालतू नहीं बोलता, कोशिश करता हूँ कि मौजू पे ही बात करूँ।
ज्यादा बोलेंगे तो हमें समझ आएगी ना। आप चलो, आपका हक
बनता है। आपकी मेहरबानी है, अल्लाह आपको खुश रखे। मेरा ख्याल है काफी हो गया, रहती है बात, ठीक है, अल्लाह हाफिज़।